ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजयुग इस विश्वविद्यालय की मुख्य पढ़ाई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 88 वर्षों से समाज की सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा का कार्य करते हुए अब 89वें वर्ष में प्रवेश हुई है। शुरू से ही हमारे सेवा के दो मुख्य साधन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत प्रातःकालीन सत्रों में आप सभी सनातन सत्यों को गहराई से समझेंगे, क्योंकि इस राजयोग का आधार कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई औपचारिक क्रिया नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है। इस सहज राजयोग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप राजयोग अनुभूति में आगे बढ़ते जाएंगे। व्यसन और विकार छूटेंगे, आप आंतरिक और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। हम यही बताते हैं कि मानव को सर्वप्रथम ये जिज्ञासा हुई कि को हम, मैं कौन हूं। इस जिज्ञासा को प्रतिउत्तर देने के लिए विविध ऋषि मुनियों ने चिंतन किया, विविध साधु संतों ने मंथन किया और इसका प्रत्युत्तर एक सरीखा नहीं आया। हरेक ने अपने चिंतन अनुसार बताया कि को हम, इसका प्रत्युत्तर है सो हम, ब्रह्मो हम, शिवो हम। हमारे देश के कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने एक काव्य में बताया है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है? अंतर मम विकसित करो मीन्स मेरे आंतरिक स्वरूप को उज्जवल करो, निर्मल करो। तो उसके लिए हमें अपने आंतरिक स्वरूप को अच्छी रीति से जानना होगा। हम अपने शारीरिक स्वरूप को, बाह्य स्वरूप को जानते हैं, आपस में मिलते हैं, हम सर्वप्रथम एक दूसरे परिचित होना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है, यही हम पूछते हैं और उसको हम अपना शारीरिक परिचय देते हैं। अपने को अंडरस्टूड है, देह समझते हैं और देह भान में रहते हैं। हम अपना शारीरिक नाम, रूप, रंग और आयु के कॉन्शियसनेस में रहते हैं। मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं मिसिस फलानी हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। इसका मतलब ये है कि हमें शारीरिक नाम की कॉन्शियसनेस रहती है। कुछ एक कर्मों में हमें अपने रूप रंग की कॉन्शियसनेस रहती है। हम जब आईने में देखते हैं, कोई शुभ प्रसंग पर जाने के लिए तैयार होते हैं, उस समय हमें अपने नाम, रूप, रंग की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं श्याम हूं। हमें अपने रूप रंग की कॉन्शियसनेस रहती है। हमें अपनी शारीरिक आयु का भी बहुत भान रहता है। मैं युवा हूं, मैं बूढ़ा हूं, अपने आयु की कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। इसी प्रकार हमें देह संबंध का भान रहता है। आपस में कहते हैं, पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, वो मेरे ऑफिसर है, पिताजी है, उसके भान में हम रहते हैं। मैं सास हूं, मैं फलाने का पति हूं, फलाने का मैं ससुर हूं, इस देह संबंध के अभिमान में हम रहते हैं। इसी प्रकार हमें अपने पद, प्रतिष्ठा और अपनी प्रवृत्ति का भी अभिमान रहता है। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ऑफिसर हूं, मैं बड़ा उद्योगपति हूं, मिनिस्टर हूं। हमें अपनी कार्य प्रवृत्ति, हमें अपना इसका प्रोफेशन का, पोजीशन का अभिमान रहता है। इस प्रकार से हम देह धर्म के अभिमान में भी रहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, बौद्धिस्ट हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इस प्रकार के मुस्लिम हूँ, इस प्रकार हमें देह धर्म का अभिमान रहता है। हमें देह की जाति ज्ञाति का भी अभिमान रहता है, मैं ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, राजपूत हूँ, हम इस देह की जाति ज्ञाति के अभिमान में रहते हैं। फलाना अगड़ी जाति का है, फलाना पिछड़ी जाति का है, कितना देह की जाति ज्ञाति के अभिमान में हम रहते हैं। हमें अपनी भाषा का अभिमान है, प्रांत का भी अभिमान है। हम मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, हम इस भाषा के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अपने प्रांत के कॉन्शियस रहते हैं। हम कह सकते हैं प्रतिदिन के 24 घंटे में हम 12 घंटे खाने पीने सोने में नहाने धोने में इसी दैहिक प्रवृत्ति में समय बिताते हैं। ऑलमोस्ट 50% टाइम हमारा खाने पीने सोने में नहाने धोने में ही खर्च होता है। बाकी रहे 12 घंटे में से 8-10 घंटे हमारा नौकरी धंधे में आने जाने में जाता है, और वो नौकरी धंधा भी किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? कहते हैं ना कि पेट के लिए करना पड़ता है, परिवार पोषण के लिए करना पड़ता है। तो इस प्रकार 35% हमारा टाइम नौकरी धंधे में जाता है, और बाकी रहे 2-4 घंटे वो हम टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर इस प्रकार के मनोरंजन में खर्च करते हैं। हमारी रोज की दिनचर्या को देखते हुए यही सिद्ध होता है कि हमारा जीवन बॉडी कॉन्शियस बन गया है, हम देह अभिमान में आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि हम भौतिकवादी भोगवादी बन गए हैं। अब इस देह अभिमान में रहते हुए यहां हमें कुछ क्षण शांति में बैठते हुए अपने आप में ये सोचना है कि क्या हम शरीर हैं, क्या हम शरीर हैं? अगर हम अपने विवेक से इस प्रश्न पर विचार करें तो शरीर के बारे में हम क्या जानते हैं? शरीर हमारा हड्डी, मांस, चमड़ी और लहू से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। शरीर तो स्थूल है और इन मांस चमड़ी का बना हुआ है, जिसको विज्ञान कहता है कि हम प्रकृति के पंच महाभूतों का बना हुआ स्थूल शरीर है। प्रकृति के पंच महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है, जब कोई शरीर छोड़ता है, तो संस्कृत में हम कहते हैं पंचत्वम गतः, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पांच तत्व में पुनः मिल गया, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। परंतु जब हम जीवात्मा कहते हैं, मनुष्यात्मा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग जब हम कहते हैं, तो दो शक्ति का अस्तित्व सिद्ध होता है, मानव शरीर प्लस आत्मा, अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा जीवात्मा कहा जाता है। शरीर के बारे में हम जानते हैं, शरीर देखने में आता है, स्थूल है, पांच तत्वों का बना हुआ है, ये हड्डी मांस का स्ट्रक्चर हमें देखने में आता है और मेडिकल साइंस भी हमें कहती है कि ये तत्वों का बना हुआ है। लेकिन शरीर से अलग जो चैतन्य शक्ति है, जिनको हम इन आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, परंतु जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस चैतन्य शक्ति को आत्मा कहा जाता है। जब तक आत्मा शरीर में है, हम कर्म कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर से निकल जाती है, हम डेड बॉडी के आगे दीपक जलाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्योति निकल गई तो स्थूल दीपक जला के रख देते हैं। हम कहते हैं कि ज्योति निकल गई, ज्योति बुझ गई, लाइट हैज गॉन, दीवा बुझ गया। ऐसी चैतन्य शक्ति को निकल जाने के बाद हम बाह्य स्थूल दीपक जला देते हैं। हम कहते हैं, हम सब मित्र संबंधियों को सूचित करो, जल्दी जल्दी तैयारी करो, अब इस डेड बॉडी को निकालो। आत्मा निकल जाने के बाद हम इस डेड बॉडी को घर में रखना भी नहीं चाहते। कहां हम जीते जी आपस में जन्म जन्म रहना चाहते थे और कहां आत्मा के निकल जाने के बाद डेड बॉडी को हम निकालना चाहते हैं। हम अग्नि संस्कार देना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं, हम उसको काट पीट करके पोस्ट मॉर्टम करना चाहते हैं। फिर कितना भी जलाओ, काटो या दफनाओ, कोई शरीर आत्मा को, डेड बॉडी को कोई असर नहीं होती है। तो ये अनुभूति चैतन्य आत्मा को होता है। तो आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में मीन्स मस्तक में, जो इस शरीर का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा निवास करती है। इसका सरफेस पॉइंट ये भ्रुकुटी कहा जाता है। वहां हम यादगार तिलक लगाते हैं। हम घर में जब धार्मिक प्रसंग है, मांगलिक प्रसंग है, हम बच्चों को, बूढ़ों को, बहनों को, सबको तिलक लगाते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। अक्षत मीन्स एक अर्थ चावल होता है और एक अर्थ जिसका क्षत नहीं होता, विनाश नहीं होता, अविनाशी आत्मा को ज्ञान कुमकुम से रंगना है। हम सिर्फ यादगार निभाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि हम शरीर नहीं हैं, चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो आत्मा और शरीर, आत्मा चैतन्य शक्ति है, शरीर प्राकृतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है। अब हम समझेंगे भौतिक शक्ति क्या है। यहां आप देख रहे हैं, बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, हीटर गर्मी दे रहा है, पंखा घूम रहा है। हमें देखने में तो स्थूल साधन आते हैं, बल्ब प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, परंतु वास्तविकता क्या है? ये बिजली की शक्ति है जो बल्ब के द्वारा प्रकाश देती है, ट्यूब द्वारा प्रकाश देती है। ये बिजली की शक्ति ही पंखे को घुमा रही है, हीटर से गर्मी पैदा करती है, पंखे को चला रही है। बिजली दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर के विविध अंगों द्वारा कर्म करती है, अंगों को ऊंचा नीचा हिलाती है। ये चैतन्य शक्ति आत्मा करती है। चैतन्य शक्ति ही प्रकाश, गर्मी और शक्ति के रूप में अनुभव होती है। इस प्रकार चैतन्य शक्ति आत्मा आत्मा है, तो आत्मा की चैतन्यता क्या है? हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हम बुद्धि के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं, विचारों को समझ कर क्या करना नहीं करना ये डिसीजन लेते हैं, और संस्कार अपने में जो कर्म करते हैं अल्टीमेट संस्कार के रूप में धारण होते हैं। तो आत्मा ही कर्म करती है। हम कह सकते हैं कि विचार कर्म का बीज है, कर्म ही प्रभाव आत्मा में संचित करता है, और जैसे संस्कार बनते हैं वो ही आत्मा की साथ जाती हैं। जो कुछ भौतिक धन साधन कमाते हैं वो तो यहाँ ही रह जाता है। इस भौतिक जगत से हम जो प्राप्त करते हैं वो कहते हैं ना कि जब शरीर छोड़कर आत्मा जाती है तो वो एक इंच भी अपने स्थान से आगे नहीं आते हैं। जो हमारे मित्र संबंधी है, जिनको मेरे मेरे कहकर मित्र संबंधी की पालना में हम फंसे रहते हैं, वो मित्र संबंधी कहाँ तक आते हैं? हाँ, स्मशान तक आते हैं, वो आत्मा के साथ नहीं जाते हैं। तो आत्मा कर्म का अनुभव करती है और कर्म संस्कार बनते हैं, तब हम संस्कारों अनुसार आत्मा की गति होती है और पूर्व जन्म में आगे के जन्म में नई स्थिति हमें प्राप्त होती है, हमें सहानुभूति होती है, हमें किसी के दुख दर्द पर सहानुभूति होती है, रहम आता है, दया आती है। ये सहानुभूति चैतन्यता का लक्षण है। हमें इच्छाएं होती हैं, हमें स्मृति रहती है। कोई सुंदर स्थान आप देखकर आ गए, उस स्थान की देखी हुई सुंदरता हमें बार बार स्मृति में आती है। कोई स्वादिष्ट व्यंजन हम खाते हैं, मुख में खाकर पदार्थ पूरा कर दिया है, परंतु फिर खाने की इच्छा होती है। तो ये स्मृति, इच्छा, सुख दुख, सहानुभूति, कर्म, विचार, ये चैतन्य आत्मा को आते हैं। तो आत्मा और शरीर मिलकर हमारा अस्तित्व बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का, स्वयं के बारे में प्रथम सत्य यही हमें समझना है कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के कर्मों के आधार पर हमें शरीर प्राप्त होता है, इसलिए मैं मुख्य आत्मा हूं और शरीर गौण है। आत्मा शरीर में प्रवेश करने के बाद ब्रुकुटी में निवास करती है और इसलिए हम तिलक करते हैं, परंतु खुद को आत्मा नहीं समझते हैं। आत्मा मस्तक के बीच ब्रुकुटी में निवास करके, जो मस्तक शरीर का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है, मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है, वहां रहकर पूरी शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करती है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ चैतन्य सितारा है। हम धरती के सितारे हैं, वो आसमान के सितारे हैं। वो देखने में सूक्ष्म आते हैं, परंतु हम रियली आत्मा अति सूक्ष्म है। आज विज्ञान आत्मा को देखने का कितना प्रयास करता है, परंतु आत्मा का अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु दिखाई नहीं देता है। आत्मा ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, आत्मा षटकोण या अष्टकोण नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है, चैतन्य है, अति सूक्ष्म आकार। हम किसको कहेंगे? बिंदु, पॉइंट को कहेंगे। इसलिए मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। आत्मा और शरीर का हम तुलनात्मक अभ्यास करेंगे। बीचों बीच दिखाया है कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर से कोई स्त्री है, शरीर कोई पुरुष का है। इस स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बॉडी कॉन्शियस बनने से, देह खुद को समझने से, देह को देखने से हमारी स्मृति को हम भूल जाते हैं, आत्मा नहीं समझते हैं। और देह को देखने से ही घर घर में स्त्री और पुरुष के बीच में कितना भेदभाव रहता है। ये बेटा है, ये बेटी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कितना भेदभाव घर में रहता है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि हम सब आत्मा है, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम विश्व एक परिवार है, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमधाम के निवासी हैं। तो हम आपस में वैश्विक एकता, सद्भावना या सदाचार, स्थापन करना चाहते हैं, आप चारों ओर कितना युद्ध चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। ये युद्ध के कारण कौन से हैं? हमारा भाईचारा नहीं है, हमारा सद्भाव नहीं है, एक दूसरे हुसा तुसी के, चढ़सा चढ़सी के भाव युद्ध कराते हैं। कोई लोभ लालच में आकर, अहंकार में आकर, गुस्से में आकर अपने को बड़ा दिखाने के लिए शस्त्रों का युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है। जब तक हम अपने को आत्मा समझकर, आत्म दृष्टि से सर्व को नहीं देखेंगे, तब तक सोल कॉन्शियस लेवल से ही हम भाईचारा ला सकते हैं, वैश्विक एकता स्थापन कर सकते हैं। इस वर्ष हमारी सभी सेवाओं का अम्ब्रेला थीम है मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट, वैश्विक एकता और पारस्परिक विश्वास, ये हमारा मुख्य थीम है। हम आत्मभान में रहेंगे तो ही ये एकता ला सकेंगे और एक दो पर विश्वास रख कर कॉपरेशन ला सकते हैं। और भी तुलना की है, शरीर मोटर कार के समान है, आत्मा ड्राइवर के समान है। एक कार का ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है, परंतु वो अपने को मोटर नहीं समझता है। उसका खाना पीना अलग है, मोटर का पेट्रोल डीजल अलग है। तो मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, न कि शरीर रूपी कार हूँ। शरीर एक मकान है, मैं आत्मा इसका मालिक हूँ। इस हॉल में हम बैठे हैं, परंतु अपने को हॉल नहीं समझते हैं। इस सोफा कुर्सी पर आप सब बैठे हैं, परंतु आप सोफा कुर्सी समझते नहीं हैं। जब हम सोफा से कुर्सी से अटैच हो जाए और अटैच होके चलना चाहे, तो चलना इजी होगा या मुश्किल होगा? क्या होगा? मुश्किल होगा ना? सोफा कुर्सी से अलग होके आप आराम से उठ के जा सकते हैं। इसी प्रकार जब देह के भान में आ जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति, संबंध, परिवार और प्रवृत्ति, ये सब संभालना, उठाना हमें बोझ लगता है, हम भारी हो जाते हैं। पर जैसे ही हम इनके कॉन्शियस नहीं होते हैं, प्रवृत्ति, परिवार, नौकरी धंधे से, निमित्त भाव से डिटैच होकर अगर हम ये संभालेंगे, तो हमें लाइट रहेंगे। शरीर एक ड्रेस है, हम आत्मा एक्टर के समान है। हम कहते भी है ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, आत्मा वैरायटी ड्रेस पहनकर वैरायटी रोल्स प्ले करती है, परंतु मैं ये शरीर ड्रेस नहीं हूँ। मैं जो रोल प्ले करती हूँ, मैं पिता का रोल प्ले करती हूँ, माता का रोल प्ले करती हूँ, बच्चे का रोल प्ले करती हूँ, बहू का रोल प्ले करते हैं। ये वैरायटी रोल्स जो हम प्ले करते हैं, मैं वो रोल नहीं हूँ, मैं शरीर ड्रेस नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूँ। हम एक्ट करते हैं, कर्म करते हैं। नीचे गीता में से उदाहरण दिया कि मैं आत्मा रथी हूँ, रथवान हूँ। शरीर एक रथ के समान है। गीता में कहा है कि नौ द्वार वाली नगरी में रहने वाली मैं आत्मा हूँ, और ये नौ द्वार वाली पुरी है जिसमें आत्मा पुरुष रहती है। जब रथी, गीता में दो शब्द कहे हैं आत्मा के लिए, रथी और देही। जब रथी निकल जाती है तो ये रथ डेड हो जाता है, और इस डेड बॉडी को हम अरथी कहते हैं। जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो उनको कहते हैं फलाने की अर्थी उठी। अर्थी माना क्या? जिसमें रथी नहीं है, आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहा जाता है। आत्मा पंछी है, शरीर पिंजरे के समान है। आत्म पंछी उड़ गया, आत्मा हंस चला गया, शरीर पिंजर कहा जाता है। इस प्रकार कंपैरिजन किया है तो मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शरीर पांच कर्मेंद्रियों का बना है। ये पंचेंद्रिय कहा जाता है, और कहते हैं कि ऑर्गन्स, ये जो कर्मेंद्रियां हैं, वो डोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कहा जाता है। सही या गलत ज्ञान आंखों से, सूंघने से, खाने से प्राप्त होता है, कानों से बात सुनने से, आंखों से परिस्थितियां देखने से सही या गलत ज्ञान पैदा होता है। तो जैसे शरीर पांच कर्मेंद्रियों का समूह है, ऐसे आत्मा तीन मुख्य शक्तियों का चैतन्य समूह है, मन, बुद्धि और संस्कार चैतन्य समूह है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है, इसलिए मन और बुद्धि आत्मा की शक्ति है, वो प्राकृतिक शक्ति नहीं है। मन बुद्धि संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन आत्मा की विचार शक्ति, मनन शक्ति, चिंतन शक्ति को कहा जाता है। मन का कार्य है विचार करना, सोचना, कल्पना करना और आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। इसलिए आज मन चंचल बन गया है, विकारी ग्रस्त हो गया है, पतित भ्रष्ट हो गया है। इस मन को शुद्ध एकाग्र करने के लिए सत्य ज्ञान और राजयोग का अभ्यास इस विद्यालय में सिखाया जाता है। हमें अभ्यास भी करने की जरूरत है और सत्य ज्ञान लेने की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे मन के वाइब्रेशंस प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं, कृषि को भी प्रभावित करते हैं। हमें योग सीखकर पवित्र वाइब्रेशंस वायुमंडल में भी फैलाने हैं और अपनी कृषि को भी देना है। तो ऐसी यौगिक खेती से, यौगिक कृषि से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम मन के नकारात्मक चिंतन को, नेगेटिव थिंकिंग को, बिन जरूरी, बिना मतलब की व्यर्थ बातें हम सोचते रहते हैं। आपस में जब मिलते हैं तो हम क्या बातें करते हैं? माताएं बहनें आपस में जब मिलती हैं, भाई लोग भी आपस में मिलते हैं, तब तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते हैं। इसमें हमें नींद नहीं आती, देर रात तक हम बातें करते रहते हैं, समय की कोई सीमा नहीं रहती है। अब इस व्यर्थ चिंतन को छोड़, पर चिंतन को छोड़, संसार चिंतन को छोड़, जो जरूरी है वो चिंतन हमें करना है। हम यहाँ आत्मचिंतन सिखाते हैं, प्रभु चिंतन सिखाते हैं, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करना सिखलाते हैं, परंतु आपको अभ्यास नहीं है, इसलिए आप रोज समय निकाल कर सुबह शाम और दिन में कर्म करते हुए अगर श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, परमात्म चिंतन, आत्म चिंतन, सद्ज्ञान चिंतन करना रखेंगे तो आप अपने नकारात्मक चिंतनों से मुक्ति पाएंगे और पॉजिटिव थिंकिंग आपका चलेगा। आजकल बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हैं, परंतु पॉजिटिव आत्मचिंतन है और श्रेष्ठ चिंतन है। मन में अनेक विचार आते हैं, परंतु सभी विचार कर्म में नहीं आते हैं। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। आत्मा का जजमेंट पावर, विवेक शक्ति को परख शक्ति कहो, जजमेंट निर्णय शक्ति कहो, उसको बुद्धि कहा जाता है। परंतु आज बुद्धि पतित भ्रष्ट बन गई है, क्योंकि बुद्धि में सही ज्ञान रहा नहीं है। तो अब इस सत्य ज्ञान से, सद्विचारों से सद्कर्म करना है और सत्य आत्मस्थिति बनानी है। तो जो बुद्धि से निर्णय करते हैं, उसके बाद हम कर्म करते हैं। आपको निर्णय, आपको निमंत्रण मिला विद्यालय के भाई बहनों द्वारा कि माउंट आबू चलो, वहां ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस है। आपने सोचा जाएं न जाएं, ये काम है वो काम है, समय नहीं है, परंतु फिर आपने निर्णय किया कि चलो जाते हैं, उनका हेडक्वार्टर देखते हैं, वहां क्या सिखाते हैं, और आप यहां आए। ये आपका कर्म हुआ। यहां जो कुछ आपने देखा, सुना, समझा, भाई बहनों से मिले, वो प्रभाव आप में पड़ा, उस प्रभाव, संचित प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्मों का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है। इस कर्म के संचित प्रभाव को स्वभाव संस्कार कहते। तो देखो, विचार कर्म का बीज है। बुद्धि अंडरस्टैंड करती है राइट रॉन्ग क्या है, फायदा किस में है, नुकसान कैसे है, वो निर्णय करने के बाद आप कर्म करते हैं। और बार 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 जो कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आत्मा में संचित होता है। इससे स्वभाव संस्कार बनते हैं, हमारी हैबिट्स बनती हैं। इसको ही हम सब कॉन्शियस कहते हैं। तो संस्कार आत्मा में संचित होते हैं, और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है, तो किए हुए कर्मों का रिजल्ट संस्कार रूप में अपने साथ ले जाती है। जैसे संस्कार, ऐसी हमारी गति होती है, और आगे के जन्म में हमें ऐसी ही स्थिति प्राप्त होती है। अगर हमने अच्छे कर्म किए, अच्छे संस्कार बनाए, तो सच्चरित्रवान परिवार में, शाहूकार परिवार में हमें जन्म मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे संस्कार लेके जाते हैं, तो हमारी दुर्गति होती है। चरित्रहीन परिवार में, गरीब परिवार में, बुरी आदत वाले परिवार में जन्म लेते हैं। आत्मा के ओरिजिनल कौन से संस्कार है, ये सात गुण, ये हमारी इनेट क्वालिटीज है, और इस क्वालिटीज को इसलिए हम अभी तक भी चाहते हैं आत्मा की ये सात मूल क्वालिटीज है, अनादि गुण धर्म है, ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं। बच्चा छोटा है, बचपन से उसमें जिज्ञासा रहती है, इसलिए बड़ों के जूते चप्पल पहनता है, सीखता है। तो हम आत्मा में जानने की जिज्ञासा बचपन से ही रहती है। ये ज्ञान, सत्य ज्ञान आत्मा की मूल क्वालिटी है। आत्मा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पवित्रता हमारे में आती है, सत्य ज्ञान पवित्रता लाती है, और पवित्रता हमारे में शांति और प्रेम धारण कराती है। और जब हमारे में शांति और प्रेम आता है, घर के वातावरण में शांति रहती है और आपस में प्रेम भरे संबंध बनते हैं, तो हमें सुख और आनंद की अनुभूति होती है। जब आंतरिक सुख आता है तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद, खुशी दिखाई देती है। और ये छह के छह गुण आत्मा में जब इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर समाये तो है परंतु हम स्व में स्थित नहीं है, इसलिए ये गुण बाहर दिखाई नहीं देते। ये छह गुण धारण हो जाते हैं तब हम शक्तिशाली आत्मा कहे जाते हैं। तो टोटल ये सात गुण हमें अपने अंदर लाने हैं। प्रथम ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए ही आप सबको यहाँ बुलाया है। मॉर्निंग के जो मेडिटेशन के सेशंस है, जिसमें रोज आप मूल ज्ञान प्राप्त करेंगे। सत्य ज्ञान आत्मा की वृत्ति दृष्टि बनाती है, हमारे में पवित्रता आती है, सत्यता और पवित्रता आती है। पवित्रता आने से पवित्रता शांति और प्रेम हमारे में लाती है। हम ओरिजिनल शांत आत्मा है। ये शांति और प्रेम आने से आंतरिक सुख का अनुभव होता है और आनंद हमारा दिखाई देता है। ये है शक्तिशाली आत्मा के सात गुण। जो सात गुणों को आत्म अभिमानी बनकर अपनी आत्मा से ही उनको जागृत करना है। अब लास्ट पॉइंट समझेंगे कि हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है। ये तो हम जानते हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, परंतु कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है ये हम नहीं जानते हैं। हम ये सबसे नीचे आसमानी रंग से जो बताया है, ये प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ साकार मनुष्य लोक स्थूल वतन है। हम इस स्थूल वतन को, इस भौतिक जगत को कर्म क्षेत्र कहते हैं। हम इस भौतिक जगत में आकर भौतिक तत्वों से बना हुआ, पांच तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर धारण करते हैं और कर्म करते हैं। कर्म करना, कर्म फल भोगना, यही तो जीवन है। इसलिए जन्म लेना माना शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना, इसको मृत्यु कहते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो हमारी जीवन यात्रा है वो एक प्रकार से कर्मों का व्यापार है। इसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, साक्षात्कार का वतन है, जो परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना, इस नई दुनिया की पालना और पुरानी कलियुगी दुनिया का विनाश करना कराता है। इसलिए वे ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव की रचना करते हैं। त्रिदेव की रचना कराने वाला, करने वाला त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। आपने भक्ति में देखा है शिवलिंग पर त्रिपुंड करते हैं और ऊपर ज्योति बिंदु लगाते हैं। तो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, त्रिदेव की रचना करते हैं और गॉड मीन्स स्थापना, जनरेशन, ओ मीन्स ऑपरेशन और डी मीन्स डिस्ट्रक्शन कराने वाला ये कार्य करते हैं। और इसके भी ऊपर पांच तत्वों से पार छठे अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में, इसको छठवां तत्व कहते हैं। पांच तत्वों से पार ये छठवां तत्व है, अखंड लाल ज्योतिर्मय महातत्व ब्रह्म तत्व उसे कहते हैं। ब्रह्म कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म लोक है, ब्रह्म तत्व है। इस तत्व में हम आत्माएं रहती हैं। चित्र में देख रहे हैं ज्योति बिंदु आत्माएं यहां रहती हैं और इस आत्माओं के ऊपर जो परम ज्योति, परम ज्योति तत्व दिखाया है, जो परमात्मा है, वो तत्व नहीं है, वो चैतन्य शक्ति है। इसलिए गीता में कहा है ज्योति शाम अपि तद ज्योति, ज्योतियों में भी उत्तम परम ज्योति आदित्य वरेण्यम सूर्य समान प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु परमात्मा, तो ये मूल वतन है परलोक ब्रह्मलोक परम धाम शांति धाम निर्वाण धाम। इसको आलमे अरवाह रूहों की दुनिया सातवां आसमान पर परमात्मा रहते हैं, ऐसे ये वैरायटी भाषा में अलग अलग नाम है। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला आसमानी पिता, तो वो परम ज्योति बिंदु परमात्मा और हम सर्व आत्माओं का असली घर शांति धाम है परम धाम है। ये है हम परम धाम से इस दुनिया में आते हैं, 84 का जन्म चक्कर लगाते हैं, 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके हम वापिस घर जाते हैं, परमात्मा आते हैं पावन बनाकर हमें ले जाते हैं। इसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धर्म है। ये दुनिया टॉकी वर्ल्ड है, इसमें हम आवाज करते हैं, सूक्ष्म वतन मूवी की दुनिया है, इशारों से चलती है, और मूल वतन हमारा असली घर साइलेंस वर्ल्ड है, वहाँ हम शांति में रहते हैं, अपनी सत्य पवित्र स्थिति में रहते हैं। तो ये है आत्मा का सत्य परिचय। इस परिचय को अब हम चिंतन में लाएंगे, महसूस करेंगे, तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठें, भल आपको सोफा कुर्सी के बैक का सहारा लेना हो तो लीजिए, परंतु स्ट्रेट बैठिए। एक दो से अलग अलग बैठें, काफी कुर्सी खाली है, एक दो से अलग अलग होकर बैठिए। आप जो भी अपने साथ लेके आए हैं, वाटर बॉटल है, हैंडबैग है, मोबाइल है, वो सब एक तरफ नीचे रख दीजिए। कोई भी अटैचमेंट साधनों का ना रखें, इससे अलग होके बैठ जाएं। खुद को आत्मा निश्चय कर इसी स्मृति के अभ्यास में हमें बैठना है। मैं आपको गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी, परंतु आपको कमेंट्री मुख से रिपीट नहीं करना है, मन ही मन रिवाइज
करना है और रिवाइज करने के साथ बुद्धि से इसका अर्थ समझकर रियलाइज करना है। ये सोल रियलाइजेशन है जो प्रथम लेसन आपको कराया गया। आंखें खुली रखें, नॉर्मल बातचीत करते हैं तो आंखें कैसी रखते हैं, ऐसी नॉर्मल आंखें रखते हुए अभ्यास करना है। इसमें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। योग अभ्यास में हमें आंखें खुली रखनी है, नॉर्मल रखनी है, आंख झपक भी सकते हैं। तो अब मैं आत्मा का लेसन ही सार रूप में कमेंट्री कराऊंगी। मैं एक आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा ही इस भौतिक जगत में, प्राकृतिक जगत में आकर प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ शरीर धारण करती हूँ, गर्भ में प्रवेश करती हूँ। जैसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, वो गर्भ हिलचाल करने लगता है। शरीर की पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, परंतु मैं मुख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा असली घर पांच तत्वों से भी परे सूर्य चांद सितारों से भी आगे परम धाम है, अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व में मैं ज्योति बिंदु आत्मा रहती हूँ। मेरा स्वधर्म आत्मा में गुणों के रूप में समाया है। ज्ञान सत्य के रूप में समाया है। सत्यता पवित्रता लाती है। मैं परम धाम में शांति और प्रेम स्वरूप में सभी आत्माएं परिवार के रूप में रहती है। शांति और प्रेम स्वधर्म निज गुण जब इमर्ज होते हैं तो सुख और आनंद की फीलिंग अनुभूति मैं आत्मा करती हूँ। मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ। राजयोग के ज्ञान से ज्ञान जीवन में पवित्रता लाता है। पवित्रता आने से शांति और प्रेम अनुभव होता है। मैं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप बन जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप स्वरूप शुद्ध स्वरूप आत्मा।